अब अपना ये प्रवचनसार चलता है। 34वीं गाथा चलेगी। 34वीं गाथा प्रवचनसार की, ये अपन ने समय सार समाप्त होने के बाद प्रवचन सार शुरू किया है, और प्रवचन सार वहां क्रम से जहां जाता हूं वो ही पढ़ता हूं। तो वो अभी हम 33 गाथाएं अपन ने मंगलायतन में जो उत्सव हुआ था उसमें पूरी की थी, 34 आरंभ की थी। तो ये 34वीं गाथा अपन को चलाना है। क्या प्रकरण है, मैं आप लोगों से पहले पाठ करवाता हूं 10-15 गाथाओं का। उसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को आगे पीछे ख्याल में ये बात आए कि हम क्या चल रहा है, आगे पीछे क्या चल रहा है और ये क्या प्रकरण है। यदि आप ध्यान से उस पाठ को सुनेंगे तो आपको वो बात अवश्य ख्याल में आएगी, पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिससे आप उसे रोजाना ध्यान से सुने, ऐसा नहीं समझेंगे 5 मिनट तो डॉक्टर साहब इसमें खराब कर देते हैं। उसमें खराब नहीं होते हैं, वो तो आचार्यों की बात है, वो तो गाथाओं का प्रज्ञानुवाद है, वो तो मूल जो कुंद कुंद ने कहा है उनकी बात है। हमारे पास ऐसा क्या है उनसे अच्छा जो उनकी बात नहीं करके हम अपनी बात करेंगे और वो अच्छी होगी। वो हम तो उसी की व्याख्या करने वाले हैं, इसलिए उसको समय खराब नहीं मानना चाहिए। भले ही वो अपने प्रवचन में भी कटे तो भी चिंता की बात नहीं है, फिर अपन तो एक्स्ट्रा करते हैं, प्रवचन तो उतना पूरा करते ही हैं। तो उस प्रकरण में आप अब कल ध्यान से सुनेंगे। मैं अभी आपको छोटा बताता हूं कि प्रवचन सार शास्त्र के 3 महाअधिकार हैं। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरे का नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। जिसे आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार कहते हैं। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अधिकार हैं छोटे छोटे। एक का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरे का नाम है ज्ञानाधिकार, तीसरे का नाम है सुखाधिकार और चौथे का नाम है शुभभावाधिकार, सुपरिणामाधिकार। अभी अपना ये प्रकरण ज्ञानाधिकार चल रहा है, यानी शुद्धोपयोग अधिकार में ये बताया है कि शुद्धोपयोग का जो वास्तविक स्वरूप क्या है वो बताने के बाद जब ये कहा कि इस शुद्धोपयोग की तुम इतनी महिमा गा रहे हो लेकिन हमें ये बताओ तो कि तुम्हारे इस शुद्धोपयोग को अपनाने से हमें मिलेगा क्या। बनिया बिना प्रयोजन के तो कहीं नमता है नहीं। यदि कोई बनिया वहां जा रहा है व्यापारी और वो कहीं झुका है तो हमें शक हो जाता है कोई ना कोई चीज वहां अवश्य है, कोई सोने का सिक्का होगा, कोई हीरा होगा, बनिया वैसा तो झुकता नहीं है कहीं। महाराज के सामने भी झुकेगा तो महाराज के यहां भी आशीर्वाद में कुछ मिलता होगा, हो तुमको तो ये शक है कि हमारा पति इनके आशीर्वाद से ही हो गए हैं इसलिए वहां झुकते हैं। अब वो बात अलग है कि नीचे जो चीज पड़ी हो चमकदार उसे देखकर इस चांदी का सिक्का समझकर झुकें और वहां किसी का कफ निकले और हाथ गंदा हो जाए वो एक अलग बात है। वो कहते तुम हमें ये बताओ कि मिलेगा क्या, कि तुम्हारे शुद्धोपयोग का हम करेंगे क्या। जो कहते रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, बाल बच्चे मिलेंगे, ये मिलेंगे तो ये तो तुम कहते हो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हें ज्ञान मिलेगा और सुख मिलेगा। कि ज्ञान तो ठीक है, सुख तो मिलेगा ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद चक्रवर्ती की संपदा सब मिलेगा ना, कि नहीं नहीं नहीं। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान मिलेगा, वो कौन सा सुख मिलेगा, वो हम ही बताएंगे। इसके लिए उनने ज्ञानाधिकार लिखा, इसके लिए उनने सुखाधिकार लिखा, समझिए ना। वो ज्ञानाधिकार में ज्ञान का स्वरूप नहीं बताया, ध्यान से सुनना। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का भी स्वरूप नहीं बताया, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का भी स्वरूप नहीं बताया, सम्यक ज्ञान का भी स्वरूप नहीं बताया, केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, छायक ज्ञान का स्वरूप बताया। एक ज्ञानाधिकार में छायक ज्ञान का वर्णन है, और सुखाधिकार में दुनियादारी का सुख नहीं बताया, अनंत सुख बताया, छायक सुख बताया। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारा छायक तो ठीक है, लेकिन ये दुनियादारी का सुख चाहिए हमें, ये कैसे मिलता है ये तो बता दो, चक्रवर्ती कैसे बनेंगे ये बता दो। तो हमारे पंडित लोग बता देते हैं कि हम एक विधान कराएंगे कल्पद्रुम, और तुम 3 लाख रुपया देना, हम तुम्हें चक्रवर्ती बना देंगे। क्यों बना देते हो ना, किसी को इंद्र कि चक्रवर्ती, ये पद तो ऐसे बांटते हैं ने? अब इनके भी भाव धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मिलता है, ये बताने के लिए उनने शुभ भावाधिकार लिखा। ऐसे 4 अधिकार हो गए, कौन से? ज्ञान तत्व विज्ञापन में 4 माने शुद्धोपयोग अधिकार, उसके फल में प्राप्त होने वाला केवल ज्ञानाधिकार, फिर अनंत सुखाधिकार, और फिर शुभ भावाधिकार जिससे लौकिक सुख मिलता है। लेकिन लौकिक सुख की जो दुर्गति की है आचार्य देव ने, कि वो सुख है ही नहीं, वो कितना खराब है। जिस चक्रवर्ती के लिए तुम मुंह में पानी भरे फिर रहे हो ना कि हम चक्रवर्ती कैसे बनेंगे, तो ये पंडित लोग तो तुम्हें भगवान की पूजा करने के लिए चक्रवर्ती बनाएंगे, भोग भोगने के लिए नहीं। और तुम समझ रहे कि हम भोग भोगने के लिए बन जाएंगे इंद्र? क्यों? तो उन्होंने कहा कि सबसे जगत में दुखिया जीव कौन है? क्या इसमें लिखा है प्रोतंसार में? मैं गाथाएं बता सकता हूं, पूछना हो तो पूछना। तो उसमें लिखा कि सबसे ज्यादा दुखिया चक्रवर्ती और इंद्र हैं, जिनके तुम्हारे मुंह में पानी भर भर जाता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी जीव हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कि एक गरीब को अपना दुख दूर करने के लिए 2 रोटियां चाहिए, और एक पत्नी मिल जाए तो बहुत है, इतने से उसका काम चल जाता है। लेकिन इनको 6 खंड की विभूति चाहिए और 96,000 पत्नियां चाहिए। कितने दुखी हैं, दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। कि ये 5 इंद्रियों के विषयों में इनका 24 घंटा व्यापार है। आप जानते हैं चक्रवर्ती का भोग निरंतराय होता है, वो निरंतराय होने के लिए उसकी पट रानी के बाल बच्चे नहीं होते, कि बाल बच्चे होंगे तो उसके भोग में अंतराय पड़ेगा। और वो मासिक धर्म से भी नहीं होती, क्योंकि मासिक धर्म से होगी तो भी भोग में अंतराय पड़ेगा। ऐसा निरंतराय भोग होता है चक्रवर्ती का। कितना दुखी है, एक दिन भी न चले, सोचो। ये प्रोतंसार में लिखा है, 63, 64, 65वीं गाथा में पढ़ लेना, ले जाना घर जरा। समयसार प्रोतंसार अनुशीलन भी है और वो भी है, सब है। अब मैं तो वहां तक शायद नहीं पहुंचूंगा, 63वीं गाथा 64वीं गाथा तक, क्योंकि अभी अपनी 34वीं गाथा है, इतनी गाथाएं यहां चल जाएंगी, मेरा नहीं भरोसा है। तो आप विचार करो कि सबसे ज्यादा दुखी वो हैं। क्यों? दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये पांच इंद्रियों के विषय कितने गंदे हैं, कितने गंदे हैं, और इनमें भी जो प्रवृत्ति करता है वो अनंत दुखी होगा, नहीं तो नहीं कर सकता। एक उदाहरण देता हूं, उनने तो पांच दिए हैं, मैं पांच नहीं दूंगा, सिर्फ एक दूंगा, एक उदाहरण बस। किसी वैद्य ने बताया कि आपके कान में बहुत ज्यादा दर्द हो, ऐसा लिखा है इस पूरे संसार में, आचार्य के शब्द बोल रहा हूं मैं, कान में भयंकर दर्द हो तो बकरे की पेशाब डालो तो वो दर्द ठीक हो जाता, आचार्य जी ने लिखा है। अब भैया मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं, तो कहीं तुम्हारे कान में दर्द होए तो घर जाकर के बकरे की पेशाब मत डाल लेना, और ठीक नहीं होए तो फिर मेरे पास लड़ने मत आना, कि मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं, आचार्य ने लिखा है इसलिए मैं आपको बताऊं। और आचार्य भी बहुत बड़े वैद्य नहीं थे, वो तो उदाहरण दे रहे हैं। क्या मतलब? कि अब वो एक तो पेशाब, और वो भी बकरे की, कितना गंदा पदार्थ है, और वो हमारे कान में डालेंगे तो गले में चली जाएगी, मुंह में आ जाएगी, सब जगह चली जाती है ना, अंदर मामला एक ही है। अब हम कह रहे हैं कि देखो तुम बोलो तो हम तुम्हारे गले कान में डालेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि दर्द तो बहुत है, कि डाल दो कि नहीं, देख लो कितनी गंदी चीज है, और मुंह में चली जाएगी, जिसमें आसपैरा घी जाता है, कुएं का पानी जाता है, वहां चली जाएगी, कि क्यों ज्यादा बहस करते हो, चुपचाप डालो ना जल्दी। उसे वो देर बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं है बर्दाश्त? क्योंकि दुख बहुत ज्यादा है। माने जब वो चिल्ला के कहता है कि जल्दी डालो, तो वो क्या बात को बताता है? कि उसे बहुत जोर का दर्द है। बताता कि नहीं बताता? तो ऐसे ही चक्रवर्ती और इंद्र, इनको ऐसी गंदे भोग 24 घंटे 12 महीने चाहिए, तो वो समझ लो कितने दुखी होंगे। इसलिए उनने लिखा कि दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये आचार्य की पंक्ति है, उसका तो मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, उसका वर्णन करेंगे हम, पर तुम समझ लो पहले कि वो जो सुख जिसके पीछे तुम पड़े हो, और जिस स्वभाव के कारण तुम सुखी होना चाहते हो, वो सुख नहीं। उसमें लिखा है क्या? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषय बाधा सहित है। जो हमारे विद्यार्थियों को तो याद है, हमारे विद्यार्थियों, तुम्हारे पंडितों, इन्हें विद्यार्थी मत समझना, ये बहुत उच्च कोटि के अध्ययन वाले पंडित हैं। मैं तो छाती ठोक के कहता हूं कि हमारे छोटे से पंडित को ले जाओ और बड़े से बड़े पंडित के सामने खड़ा कर दो, ये 19 साबित हो जाए तो मैं ये कहना छोड़ दूंगा और क्या करूंगा, जान तो लोगे भी मेरी। मैं सचमुच, मुझे अपने विद्यार्थियों पर इतना भरोसा है, हमने 5 साल इन पर अटूट मेहनत की है, दिन रात, इन्हें और कहीं नहीं, विषय कसाय में नहीं लगने दिया, और कोई विषय पढ़ने नहीं दिया, इसी जैन धर्म के पढ़ने में ही इनके उपयोग को लगाए रखा, और संतुष्ट, सब खाने पीने उठने बैठने की सब व्यवस्था, कहीं बाहर झांकने की रंज मात्र भी जरूरत नहीं, इसलिए मुझे भरोसा है। और तुम मेरी लाज रखना भैया, कहीं ने नहीं बता पाए तो तुम्हारी इज्जत तो जाएगी, तो जाएगी मेरी भी जाएगी। तो वो कह रहे हैं यहां केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है, जो ये अपना प्रकरण चलेगा इसमें काय का स्वरूप बताया है ज्ञानाधिकार में, केवल ज्ञान का, और केवल ज्ञान का स्वरूप जानना अपन को बहुत जरूरी है। अपन भगवान की पूजा करते हैं ना, भक्ति पूजा, तो वो भगवान किसे कहते हैं? तो अपन बोलते हैं सच्चे सच्चा देव, उन्हें भगवान कहते हैं ना। तो उनके वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों, उन्हें अरहंत कहते हैं, भगवान कहते हैं, अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता हो, जिसे केवल ज्ञान हो, तो केवल ज्ञान माने क्या? सब कुछ जानता है माने क्या? ऊपर से कहना कि वो सब कुछ जानता है अलग बात है, और उस सब कुछ जानने का अर्थ समझें वो बहुत गहरा अर्थ है उसे, तो हम सर्वज्ञता को समझे ऐसा समझ लेना चाहिए। अपन कहते वो पंडित जी तो सब कुछ जानते, वो तो पंडित जी तो सब कुछ जानते। अरे कोई सब कुछ नहीं जानता। संजीव, हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे और फिर हम छुट्टियों में अपने घर जाते थे, छोटा सा गांव है इसी यूपी का, इतना छोटा गांव है कि जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय ना उसमें स्कूल था, ना डाकखाना था, ना थाना था, ना पुलिस चौकी थी, कुछ नहीं था। और आज भी ऐसा ही कुछ है, 80 साल पहले भी जैसा था ऐसा ही आज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्या? क्या कहने के लिए मैंने ये बात कही थी? कोई बहुत बड़ी बात बताना चाहता था मैं आपको? हाँ, तो वहां से हम आते थे, वहां से आते थे तो गांव वाले हमको संस्कृत का बड़ा विद्वान समझते थे और हम भाषण भी बहुत अच्छा देते थे। तो वहां किसानों के यहां शादी में जो लग्न पत्रिका आती है, उस पत्रिका के साथ एक पत्रिका और आती है, और जिसको पंडित पढ़ के सुनाता है। जो ब्राह्मण पंडित थे हमारे पड़ोसी, तो उनको वो इतनी हिंदी अच्छी नहीं आती थी, संस्कृत पढ़ना उन्हें आती नहीं थी, तो इसलिए वो पत्रिका पढ़ने के लिए हमारे पिताजी को बुलाया जाता था, और लग्न पत्रिका ब्राह्मण पंडित पढ़ता था, और वो पत्रिका हमारे पिताजी उसके स्पेशलिस्ट थे, वो पढ़ते थे। एक जगह पिताजी नहीं थे तो लोग हमें ले गए कि ये तो बहुत बड़ा पंडित है, वहां से पढ़ के संस्कृत का पढ़ के आया है तो ये पढ़ देगा। तो हमने वो पत्रिका पढ़ी तो सारे गांव वाले नाराज हो गए। हमने तो बहुत ढंग से पढ़ी थी, अच्छी पढ़ी थी, कुछ में कोई कसर नहीं थी। तो हमारे पिताजी के पास आए कि नहीं नहीं तुमने क्या किया, तुम नहीं थे तो हमारी पत्रिका नहीं पढ़ी गई, वो जो हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, ये तुम्हारे बच्चे ने सब बिगाड़ दिया, वो सब पंच हमसे नाराज हो गए। तो वो बोले कि नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा ना, क्यों चिंता करते हो, चलो। तो द्वारा वो चिट्ठी हमारे पिताजी ने पढ़ी, कौन जो हम शास्त्री हुकुमचंद ने पढ़ी थी वो हमारे पिताजी, वे शास्त्री नहीं थे, उनने वो पत्रिका पढ़ी। तो पढ़ी उन्होंने और वो एक एक को देख करके, अभय कुमार जी, शांति कुमार जी, सुमित प्रकाश जी, फलाने जी, जलाने जी, ऐसे उनने 100 नाम पढ़ी उस पत्रिका ने, इतनी सी पत्रिका। हाँ ये बात, सब खुश हो गए, बोले इनने तो ये नाम पढ़े ही नहीं थे। और हम वहां तो क्या कहते, घर आके हमने पिताजी से कहा कि ये नाम जो तुमने पढ़े थे वो उसमें लिखे थे? बोले हाँ लिखे थे। कहते हो गया, नहीं अच्छा बताओ। तो वो बोले एक दोहा लिखा था ना वहां कि चिट्ठी बाँचत के समय जो जन बैठे हों, हे जोहार सब जनन को जो जी लायक हो। कि जब पत्र पढ़ा जाए और उस वक्त जो जो लोग बैठे हों उन सब को मेरा नमस्कार है, कौन जो जिसके लायक है, बड़ा होए तो प्रणाम, छोटा हुए तो आशीर्वाद, समझ गए ना, ये लिखा है ना। तो मैंने वही चिट्ठी बाँचत के समय जो जो बैठे थे तो उधर को देखा नहीं और वे सब पहचानते थे, उस नगर के जो बड़े बड़े नेता थे ना, उन सबका नाम बोलते गए, फलाने माते फलाने माते फलाने माते फलाने पटेल फलाने दे फलाने दे बोल दिए उनने सब सब खुश। उन्हें पहले कि हमारा नाम नहीं हमारा नाम नहीं, जिसका नाम नहीं वो रूठ जाए शादी बिगड़ जाए। तो उस दिन हमारी समझ में आई कि वो निश्चय के पंडित तो वो हैं जो हमने वहां पढ़ा है, और ये व्यवहार के पंडित हैं। हम व्यवहार के पंडित नहीं हैं भैया, हमारे बस की नहीं है। ख्याल में आया ना? लेकिन बात तो गलत नहीं है ना, लिखा है ना उनने, हमें तो पता नहीं कौन कौन बैठा। हम 25 नाम लिख दें, उन 25 में वहां एक ही नहीं हूं, और दूसरे दूसरे लोग बैठे हों तो उसे क्या फायदा होगा। तो व्यवहार की समझदारी तो यही है ना, कि जैसे हम पढ़ें तो हम सबसे पहले शास्त्री होकर के भी अपने उस गांव में जिसमें प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, 5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, पहली क्लास के लिए। और हम गवर्नमेंट के स्कूल में तो पहली क्लास ही पास हैं। हम वो दादा एक पढ़ते थे, दादा जी पहली क्लास में थे और हम अलफ बे होता था उसमें थे, फिर आगे पपोरा विद्यालय में आ गए, मुरैना में आ गए, तो दोनों एक ही जने हो गए प्रवेश का में, एक ही क्लास में दोनों हो गए थे। हम एक क्लास वहां पीछे थे, यहां साथ में ही हो गए। शास्त्री न्यायतीत एम ए पीएचडी वैसे दुनिया भर की चीजें कर डाली, बिना सरकारी स्कूल में ही गए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, यदि समाज के बीच में हमें रहना है तो। और निश्चय का ज्ञान तो वस्तु के स्वरूप को हमें चाहिए ही। तो वो कहते सर्वज्ञ जो अपने भगवान हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से चढ़ाते हैं, तो वे सर्वज्ञ हैं। इसमें तो कोई को मतभेद नहीं है ना, न किसी मुनिराज को न किसी पंडित को, पूछ लेना कहीं भी जाकर, सब तैयार हैं कि हां बिल्कुल सही है, ये बात होना चाहिए। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या, जो सब जाने वही नाम है ना, और जो भगवान ने जान लिया तो वैसा ही होगा कि नहीं। नेमिनाथ ने जान लिया था कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, तो नेमिनाथ ने जलाई थोड़ी थी, वो जलने वाली थी, वो उनने तो जानी थी है ना, और वो सही निकली कि नहीं। तो जो 3 लोग और 3 काल की सब बातें जाने, वो जाने तो वो सही निकलेंगी, तो जानने के पहले वो उसका नक्की होना चाहिए ना। यदि 12 वर्ष बाद द्वारका के जलने का नक्की नहीं होता तो वो जानते कैसे। तो नक्की था ना, इसका मतलब भविष्य में होने वाली सब चीजें नक्की हैं, है ना। आदिनाथ ने बता दिया था ना, क्या बता दिया था आदिनाथ ने, कि ये जो मारीच बैठा है भरत तेरा बेटा, ये 24वां तीर्थंकर होगा, और इसकी मां का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। बता दिया था कि नहीं, कितने वर्ष आगे की बात है, अरबों वर्ष, क्योंकि वे पहले तीर्थंकर और वे अंतिम तीर्थंकर। आदिनाथ ने बताया और महावीर का बताया, एक कोड़ा कोड़ी सागर का लंबा काल है। आप जानते हैं एक कोड़ा कोड़ी क्या होता है, मैं शिखर जी की वंदना करने गया था, सच्ची घटना बताता हूं। तो मैं डोली में बैठ के गया, 4 लोग मेरे को लेके जा रहे थे, तो लोग रास्ते में आते थे और पंडित जी नमस्ते पंडित जी नमस्ते, कोई पैर पड़ता कोई कुछ करता। तो रास्ते भर जब मेरी यही पूजा होते देखी तो वो बोले कि आप पंडित जी हो, मैंने कहा हां हम पंडित जी हैं। तो एक हमारा प्रश्न है, आप उसका जवाब दो, मैंने कहा बोलो। तो वहीं चर्चा शुरू हो गई हमारी तत्व चर्चा। उसने कहा कि तुम्हारे यहां जो कोड़ा कोड़ी, तो तुम्हारे सब मुनि कोड़ी होते हैं। तो कोड़ा कोड़ी क्या है, आप तो जानते होंगे ना सब, ये कोड़ा कोड़ी क्या है, तो मैं बताता हूं। करोर का करोर में गुणा करो, जो गुणन फल आए उसका नाम कोड़ा कोड़ी। देखो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 10,00,000 करोड़ और करोड़ करोड़। अब आया समझे, इसका नाम है एक कोड़ा कोड़ी और सागर। वे मेरे बस की नहीं है ये सागर बताना, कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा संजीव और उसमें वे बाल और वे जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सके, बहुत लंबा काल है। कभी समझना हो तो हमारे संजीव बता देंगे, दीपक भाई बता देंगे, मेरे बस की नहीं है। ख्याल में आया ना, इतना लंबा काल पहले ऋषभदेव ने बता दिया कि ये महावीर तीर्थंकर होगा 24वां मारीच और इसके मां का नाम तिसला और पिता का नाम, पक्की बात है ना। इसका क्या अर्थ हुआ बहन कि इतने काल बाद सिद्धार्थ की शादी त्रिशला के साथ होगी, ये नक्की था कि नहीं, कि त्रिशला के हाथ में था, कि सिद्धार्थ के हाथ में था, कि दोनों के मां बाप के हाथ में था, पर इतने साल पहले नक्की था, हुआ ना उसका अर्थ ही। तब तब मतलब सर्वज्ञ का अर्थ आप जाना, तो उस ज्ञान की बात यहां हो रही है, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। उस ज्ञान अधिकार है वो समझाएंगे हम आपको, 18 दिन में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि जिस ज्ञान में इतनी बातें विस्तार से सब हमारे ख्याल में आ जाएं और एक भी गलत साबित नहीं हो, केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि हमारा बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, कि पढ़ेगा तो पास होगा और नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, ऐसा हम नहीं जानना। एक बच्चा गया, जेब में 5 का नोट था, तो सड़क के किनारे एक ज्योतिषी बैठा था, उसे उसने अपना हाथ दिखाया कि पंडित जी इस साल मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं ये बताओ। तो पंडित जी ने देखा, 5 का नोट रख लिया, उसने सामने रख दिया और बोले बेटा तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो एकदम हाथ खींच लिया और 5 का नोट उठा लिया वापस, कि क्यों, कि ये तो हमारी अम्मा हमें रोजाना मुफ्त में बताती है 5 का नोट का है। केवल ज्ञानी का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पढ़ोगे तो पास होगे, तुम तो ये बताओ कि हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे और पास होंगे कि नहीं, नक्की होता है, नक्की जानना चाहता है। और वो बच्चा ये तो मानता है कि ये भविष्य जाना जा सकता है, मैं नहीं जानता हूं तो कोई ना कोई अवश्य जानता है भविष्य को, है ना, तो भगवान जानते हैं लोकालोक की बात को। तो जब वो ये ज्योतिषी भी जान सकता, हमें भरोसा है ना, तब तो हम देते उसे पैसा है। तो ज्ञान भविष्य का जाना जा सकता है और कोई व्यक्ति सब चीजों को जान सकता है, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, इसमें गाथा आने वाली है। पर आए जो अनुत्पन्न है या नाष्ट जो हो गई है, असद भावी बेश भी पर आए ज्ञान प्रत्यक्ष। जो पर्यायें आज तक होके नष्ट हो गई, जो पर्यायें अब हुई नहीं है, वे अनंत काल की, भविष्य की और भूत की, वे पर्यायें वर्तमान पर्याय के समान केवली भगवान जानते हैं। और नहीं जाने तो, नहीं जाने तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, फिर कहेगा जैसे वे जैसे हम, तो हम उनकी पूजा क्यों करें, पूजा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमको यदि पूजा भी करनी है तो जिसकी पूजा करनी है उसके स्वरूप को गहराई से हमें समझना पड़ेगा, तब हमारे पूजा सच्ची पूजा होगी। और आप लोग उपयोग को लगाएंगे तो ये विषय तो बहुत कठिन है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बहुत सरल करके आपको समझाऊंगा। कोई मां बहन ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन आना उसकी ड्यूटी है समय के पहले, और सुनना प्रेम से ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन मैं आपको समझा के रहूंगा एक कठिन विषय, और कोई आएगा इतनी सरलता से आपको समझा पाएगा, बहुत शक है ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں سمجھا پائے گا. سمجھانے والے تو ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, لیکن پھر بھی اتنا آسان نہیں ہے سبھی اس لوگ شانتی سے سمجھیں. اس منگل بھاونا کے ساتھ میں ابھی کی بات سماپت کرتا ہوں.